आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं शशि कुमार। नया साल आम तौर पर नई उम्मीदों, नई शुरुआत और नए संकल्पों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह समय आत्मचिंतन के साथ साथ चिंता, अकेलापन और मानसिक तनाव भी लेकर आता है। तो आखिर नया साल मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही जानने के लिए हमने बात की एक मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ रीमा रक्षित जी के साथ। तो आइए सुनते हैं यह बातचीत। रीमा रक्षित जी, SBS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शशि जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, ये टॉपिक पे बात करने के लिए।
लोग नए साल पर कई संकल्प लेते हैं, यह मानसिक सेहत पर कैसे असर डालता है?
तो जब भी एंड ऑफ द ईयर होता है और नया ये शुरुआत होता है नए साल की, तो हम सब सोचते कि हमारे क्या रिजोल्यूशन होगा और हमारे गोल क्या होगा। तो किसी के लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि एक तो इसका तो जैसे कॉइन का दो साइड होता है वैसे ही, एक जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। तो एक तो है कि न्यू साल जो होता है, नया साल लेके आता है बहुत सारे हमारे होप और फ्यूचर का एस्पिरेशन जो भी है, और हम लोग सोचते हैं मुझे नया घर खरीदना है या नया गाड़ी खरीदना है या नया जॉब, और स्पेशली माइग्रेंट के लिए जो भी आते हैं, जो भी वीजा पे है, वो भी उनका एक होप होता है कि हाँ, एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि अगर किसी के पास पीआर है, हाँ इस साल मुझे पीआर मिलने वाले है, और उससे बहुत सारे एस्पिरेशन। मगर हाँ, उस एक दूसरा साइड भी है, क्योंकि हमारे जो कल्चरल डिफरेंस जो भी हो, कोई 5 साल यहाँ से है या 1 साल या 10 साल, एक जो हमारे जो बॉन्डिंग होता है हमारे रूट से और कल्चरल, हमारे फैमिली से और कल्चर से, वो कभी कभी मैंने देखा है कि कभी कभी इफेक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों को। तो डजंट मैटर कि वो लोग यहाँ पे 1 साल से ही है, 6 महीने या 5 साल या 10 साल या 20 साल, तो सब बोलते रहते हैं कि आई मिस माई फैमिली, आई मिस माई फैमिली बैक होम। और ये नहीं, ये भी होता है कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेन के वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाते, और अभी हम लोग सबको पता है कोविड के बाद फ्लाइट इतना एक्सपेंसिव हो गया है, और किसी को वो भी एक स्ट्रेन रहता है। ऐसे होता है कि कभी कभी ऐसे तो नहीं कि एक सिंगल है, वो कभी कभी होता है या कपल है या फैमिली, और फैमिली ऑफ 4 हो या 3 हो, तो ये सोचते हैं कि ओ पूरा मेरा 2 महीने 3 महीने का पूरा कभी कभी वो चले जाते हैं। और जब भी अगर बाहर भी जाते हैं ना घूमने के लिए या अपने घर जाते एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने के लिए, वहां पे भी एक्स्ट्रा कॉस्ट तो रहता है, क्योंकि गिफ्ट, एक तो एक्सपेक्टेशन रहता है गिफ्ट खरीद के लेके जाना पड़ता है एक्सटेंडेड फैमिली, और बाहर भी कहीं जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं। तो हाँ, तो न्यू ईयर का तो एक है कि हाँ सब सोचते कि अच्छा ही होगा, अगर कभी कभी वो स्ट्रेस रहता है, और इमोशनल स्ट्रेस में बोलूंगी, और एंजाइटी, डिप्रेशन जो मैंने देखा है।
सोशल मीडिया पर लोग रील्स देखते हैं, कई बार सेलिब्रिटीज की लाइफ देखते हैं, तो कई बार दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखने से या तुलना करने से लोगों में किस तरह का तनाव पैदा होता है?
कभी कभी और भी होता है कि हम कल्चरली कभी कभी जो लोकल के साथ हम खुद को कंपेयर करते हैं, तो उसमें और भी ज्यादा डिफरेंस बढ़ जाता है और स्ट्रेस। और इससे क्या होता है कि कभी कभी ये स्ट्रेस ना अफेक्ट करता है पूरा फैमिली के ऊपर, और इसलिए जो भी डिसएग्रीमेंट होता है फैमिली में और कपल्स में कि और इस ये सब नेगेटिव इफेक्ट है मुझे लगता है।
कई समुदायों में और खासकर भारतीय समुदाय में मेंटल हेल्थ पर बात करना टैबू है, इसका क्या असर पड़ता है?
डेफिनेटली जो हमारे इंडियन कल्चर में मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे पेशेंट इंडिया से आते हैं, और एक तो सेंस ऑफ गिल्ट रहता है कि जैसे मेल हो या फीमेल, आई मीन लाइक हाँ नो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, जो दूसरे पार्टी लेकिन फीमेल बोलते हैं तो मेल बोलते हैं फीमेल को, और मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, स्पेशली मेल बोलते हैं कि नहीं इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि मेल को मेंटल हेल्थ हो सकता है. तो एक तो वो हमेशा वो गिल्ट फीलिंग रहता है, और टैबू तो है क्योंकि वही मैं देखती हूँ कि वो जब जिसका हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर वो लोग जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हेल्प सीख कर सकते थे तभी नहीं करते, इसलिए बहुत कभी कभी देर हो जाता है. और जब भी जीपी के पास जाता है और क्या प्लान लेके मुझे मेरे पास आता है साइकोथेरेपी के लिए, तभी कभी कभी बहुत देर हो सकता है. तो मैं बोलूंगी कि जो माइल्ड है सिम्टम, आई मीन वो बढ़ते बढ़ते अगर मॉडरेट टू सीवियर हो जाता है. और इससे क्या होता है कि एक एक पर्सन के घर पे होता है ना प्रॉब्लम, तो ये पूरा फैमिली अफेक्ट होता है, राइट? तो ये वो बच्चे भी हो सकता है, और ये भी मैंने देखा है कि मैं बहुत सारे बच्चे को देखती हूँ, तो जो हमारे इंडियन फैमिली में मैंने देखा है कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, ये तो इसका बदमाशी है, एंग्जाइटी वगैरह कुछ नहीं
जी
है. तो ये बहुत मुश्किल होना है कि उसको साइको एडुकेशन देना पड़ता है कि नहीं एंग्जाइटी मतलब ये नहीं कि वो लोग झूठ बोल रहा है, उनको सपोर्ट चाहिए, और इसका मतलब ये है कि एंग्जाइटी, तो साइको एडुकेशन बार बार देना पड़ता है. और मैं कोशिश करती हूँ ऐसे स्टेटिस्टिक्स देना और एग्जाम्पल देना सोचने के लिए. तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये बहुत सारे इट्स अ बिग प्रॉब्लम. तभी वो जो बच्चे लोग भी होता है ना, तो कभी कभी वो लोग भी थक जाता है और मुझे बोलता है कि मेरे फैमिली तो मुझे नहीं समझते, तो मैं जी के क्या करूं, ऐसे हद तक चला जाते हैं कभी कभी, तो बहुत मुश्किल है.
जी ये माइल्ड सिम्टम्स क्या हैं और कैसे इसे डायग्नोस करते हैं?
जो कैसे किसी को डायग्नोसिस करते हैं, तो अगर किसी को से एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो ही कॉमन है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे 1 in 3 तो दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, वैसे भी अदर डायग्नोसिस भी हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द कॉमन सिम्टम्स मैंने यही देखा है. तो हम डायग्नोसिस जब करते हैं तो हम जिसको बोलते हैं DSM, डायग्नोस्टिक मैनुअल होता है साइकाट्री का, और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीजेस, तो एंग्जाइटी डिप्रेशन, तो एक माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो ये बेसिस ऑफ स्केल्स होता है. तो इधर जीपीएस करते हैं और कभी कभी हम लोग भी वो स्केल एडमिनिस्टर करते हैं देखने के लिए, गिविंग एन एग्जाम्पल की 20 आइटम्स है स्केल पे. तो अगर किसी का सिम्टम 0 to 5 है तो हम इसको बोलते हैं माइल्ड फॉर एग्जाम्पल, अगर मोर देन 10 है तो हम इसको बोलते हैं मॉडरेट, से 10 to 15 ऐसे करके, और मोर देन 15 तो सीवियर. तो ऐसे करके हम डिसाइड करते हैं कि इसका माइल्ड मॉडरेट सीवियर क्या है. और सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर मॉडरेट भी सीवियर है, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे आज के पूछा अच्छा डू आई नीड मेडिकेशन, नॉट नेसेसरीली सबको मेडिकेशन का जरूरत है, डिपेंडिंग कि उनका मेंटल हेल्थ कैसे है, लाइक बहुत खराब है, सुइसाइडल है, तभी मैं बोलती हूँ नो यू नीड टू गो बैक जीपी, और जीपी से उसके बाद अगर लगता है कि नहीं साइकाट्रिस्ट के पास जाना है और मेडिकेशन पे, देन वी डिसाइड. सो इट्स लाइक अ टीम वर्क एक पेशेंट को वेलबींग के लिए और डिसीशन लेने के लिए कि इसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए उसके लिए सही क्या होगा.
क्या साल के अंत और नए साल की शुरुआत में लोगों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती है?
मैं बोलूंगी डेफिनेटली ये एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर और विंटर के टाइम पे, क्योंकि एक तो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर नॉट ओनली हमारे इंडियन फैमिली के लिए, जो भी लोकल से जो लोनलीनेस होता है वो भी हो सकता है, विडो हो सकता है या फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली दिस टाइम. और विंटर में क्या होता है, मूड बहुत डिटोरिएट होता है क्योंकि हम लोग सनलाइट नहीं मिलते ज्यादा, राइट? तो अगर किसी को ऑलरेडी डिप्रेशन है, वो घर से नहीं निकलना चाहते, मोटिवेशन लो होता है पूरा, लाइक 6-10 घंटा 12 घंटा और मोर देन दैट वो लोग सोते रहते हैं पूरा, डेफिनेटली ये जो टाइम होता है ना बहुत क्रूशियल होता है।
नए साल में मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए?
एक तो है कि ये मेंटल हेल्थ ठीक रहे, जैसे मैंने बोला कि एक WHO का कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन मतलब कि जब भी खुद को लगता है कि नहीं मैं थोड़ा डिफरेंट फील कर रही हूँ जो भी हो, तो आप किसी से बात कीजिए। वो अपने घर वालों से भी बात कर सकते हैं या अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हैं। मगर आपको लगता है कि नहीं आपके घर वाले या आपका दोस्त ऐसे जजमेंटल हो सकता है, तो आप जाके बियॉन्ड ब्लू है और लाइफ लाइन है, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। और जो काम करते हैं उनको मिलता है EAP, जिसको एम्प्लॉय असिस्टेंस काउंसलिंग बोलते हैं, आप वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। और सेकेंडली आपका सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम खुद को अच्छा रख पाएंगे ना तो सब कुछ सही होगा हमारे जिंदगी में। अगर खुद ही सही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे करेक्ट। तो मुझे लगता है द सेल्फ केयर इज द बेस्ट टेक्निक। और सेल्फ केयर के लिए मुझे लगता है कि अगर किसी को ऑब्वियसली हम एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे, तो अगेन एग्जांपल कोई बोलता है कि नो आई लाइक डूइंग प्रेयर्स, तो आप प्रेयर्स कीजिए। अगर कोई बोलता है नो आई लाइक गोइंग टू जिम, दैट्स वेरी गुड, जिम पे जाइए, वॉकिंग पे जाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा, लिसन म्यूजिक, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको लगता है कि हेल्प करेंगे, प्लीज डू दैट। सो आई थिंक द सेल्फ केयर इज द बेस्ट टेक्निक आउट ऑफ एवरीथिंग।
तो रीमा रक्षित जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नो प्रॉब्लम एट ऑल, थैंक यू सो मच एज वेल, एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एज वेल।
तो ये थी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ रीमा रक्षित, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मेडिएटर, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर और सीनियर एम्प्लॉय असिस्टेंट कंसल्टेंट हैं। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार और सलाह सामान्य है, अपनी विशेष स्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। इसी के साथ शशि कुमार को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए SBS हिंदी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।